मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, विषय तो हमारा वही है, आईएएस 2022 की तैयारी। इस पर हम लोग बातें करेंगे, लेकिन पहले जो दो खबरें हैं आइए उन्हें देख लेते हैं। कल का अगर आपने टीवी चैनल्स देखा हो, टीवी न्यूज अगर आपने सुनी हो, तो आपको एक खबर मिली होगी और वो खबर थी लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स रिपोर्ट 2021 के बारे में। देखिए, रेडियो न्यूज में शायद ये नहीं है, अखबारों में भी इसे कोई जगह नहीं मिली। हाँ, अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे इकोनॉमिक्स के अखबार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इस खबर को उसमें जगह मिली है। सच पूछे तो हम जैसे लोग जो आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, फिर ये उनका दायित्व तो बन जाता है कि ऐसी खबरें जो हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, या कह लीजिए सिविल सर्विस में संभावनाओं से भरी हुई है, लेकिन अखबारों में या न्यूज के दूसरे माध्यमों में उन्हें स्थान नहीं मिल पाता, आपका ध्यान दिलाएं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट जारी हुई है, 2021 की रिपोर्ट, यानी कि अभी वर्तमान रिपोर्ट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसे देखिए, और ये है क्या इसे हम जानते हैं। इसका नाम क्या है? लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब आप समझते हैं। सच पूछे तो जो आपूर्ति श्रृंखला शब्द, या कह लीजिए आपके सिलेबस में जो मेंशन किया हुआ है, ये आपूर्ति श्रृंखला मेंशन किया हुआ है, ये उसी का हिस्सा है। जब हम आपूर्ति श्रृंखला शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सप्लाई चेन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक वस्तु है, उसका प्रोडक्शन होता है, वहां से लेकर के वस्तु को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, जो उसका उपभोग करेगा। तो इस बीच की जितनी भी कड़ियां हैं, वो पूरी की पूरी कड़ियां आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं। और बकायदे जो इकोनॉमिक्स के आपको ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें विस्तार के साथ मैंने इसके बारे में बात की है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो रिपोर्ट है आपके सिलेबस का हिस्सा है, करंट अफेयर्स है लेकिन यह आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो आपको जानना चाहिए, राइट? तो देखिए, हम सिलेबस से बाहर नहीं जा रहे हैं। अगर सिलेबस आपके दिमाग में स्पष्ट है तो आप अपने लिए जरूरी चीजों को बिल्कुल पहचान लेंगे। तो यह है क्या रिपोर्ट? लॉजिस्टिक इज, यानी कि लॉजिस्टिक के मामले में किसने अच्छा, कौन अच्छा कर रहा है। इज का मतलब है आपने आसान बना दिया है। अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, सामान एक राज्य से दूसरे राज्यों को जा रहा है, पता लगा जम्मू कश्मीर से उत्पादित होकर के कन्याकुमारी तक पहुंच रहा है, तो कितने राज्यों को पार करता हुआ वह सामान वहां पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर का अखरोट पहुंच रहा है नीचे तक, केरल तक, तमिलनाडु तक, तो वहां से वो चल रहा है और वहां तक पहुंच रहा है। तो स्टेट, अक्रॉस द स्टेट, डिफरेंट स्टेट लीड्स, मतलब पूरे के पूरे लॉजिस्टिक के मामले में अलग अलग राज्यों की क्या स्थितियां हैं, जब सामान एक राज्य से दूसरे राज्यों की ओर जाता है, परिवहन होता है, परिवहित होता है। यह रिपोर्ट है, मेरे समझ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो रिपोर्ट है, इसमें गुजरात को पहला स्थान मिला है। ये प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। गुजरात पहले स्थान पर है। गुजरात शुरू से ही बहुत अच्छा कर रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में, आपको मालूम है। हरियाणा दूसरे स्थान पर है, पंजाब तीसरे स्थान पर है। हरियाणा और पंजाब भी आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइज्ड और काफी अच्छे स्टेट है, और इसमें छोटे छोटे राज्य भी है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये है कि जो लॉजिस्टिक के मामले में जो सरलता हो, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कहते हैं, तो लॉजिस्टिक ऑफ डूइंग बिजनेस आप कह लीजिए, मोटे तौर पर समझने के लिए ईज ऑफ डूइंग लॉजिस्टिक बिजनेस कितना आसान आपने बनाया है। और जानते हैं आपकी भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 13 to 14% ऑफ द GDP है, जो बहुत ज्यादा है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो लगभग 8-9% तक पहुंच चुके हैं। तो हमें इसे कम करना है। और उस रिपोर्ट में, बकायदे न्यूज में ये दिखाया भी गया था कि 5 सालों में हो सकता है कि हम इसे 5% रिड्यूस कर लें, तब फिर हम वर्ल्ड लेवल पर पहुंच जाएंगे, अगर 5% हमने रिड्यूस कर लिया तो। और ये जो सूचकांक जारी किए जाते हैं, इसका पर्पस यही होता है कि जो राज्य हैं वो आपस में प्रतिस्पर्धा करें कि नहीं नहीं हमको अच्छा स्थान हासिल करना है, तो वो अपने यहाँ वो लॉजिस्टिक सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे, वो समस्याओं को पहचानेंगे कि अच्छा हमारे राज्य में क्या समस्याएं हैं, और फिर उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए छोटी सी जानकारी है, जो आपके दिमाग में दर्ज रहनी चाहिए, और इतना ही आपके लिए सफिशियंट होगा। दूसरी जो खबर है, छोटी सी खबर है, आपको मालूम है ग्लासगो में सम्मेलन चल रहा है। देखिए, मैं बार बार आपको याद क्यों दिलाता हूं, क्योंकि जब आप बार बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में रच बस जाएगा, तो फिर आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। और ये मत समझिए कि इसका संबंध केवल ग्लासगो सम्मेलन से है, ढेर सारी जो दूसरी चीजें होती हैं आपके दिमाग में परत दर परत वो जमती चली जाती हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन है यही आपकी कैपेसिटी का बिल्डिंग करती है, कैपेसिटी का निर्माण करती है, कि पता लगा क्वेश्चन तो कुछ और पूछा गया है, लेकिन आपकी जो जानकारियां हैं ढेर सारी, उन जानकारियों के आधार पर आप सही विकल्प तक पहुंच जा रहे हैं। ये प्री एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी ताकत होती है और यूपीएससी भी यही जानना चाहता है। तो अभी जो COP26 ग्लासगो में चल रहा है, वहां एक अच्छी सफलता कह लीजिए मिली है, बहुत अच्छी तो आप नहीं कह सकते, कि लगभग 105 देशों ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि वो सन 2030 तक अपने यहां जो कार्बन उत्सर्जन है वो 30% तक कम कर देंगे, और 30% तक कम करने से 2020 के लेवल पर वो आ जाएंगे ये माना जा रहा है। तो ये उन्होंने समय लिया है 2030 तक का, तो चलिए एक थोड़ी सी संभावना बनी है। आज का जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसमें एक एडिटोरियल कमेंट आया है और वो बहुत अच्छा है, वो मिथेन क्वेश्चन करके है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और इसका हिंदी वर्जन भी हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे। इसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो विश्व में जो मीथेन गैस का जो इमिजन हो रहा, उत्सर्जन हो रहा, और मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैसेस है आप जानते हैं, उसका 30% पूरी दुनिया में 32% जो मीथेन का जो उत्सर्जन होता है वह पशुपालन से होता है, पशुओं के पालन से, भेड़ है, बकरी है, गाय है, ये सब जो भैंस है ये इनके पालन से होता है 32%। तो सोच करके देखिए कि कितना बड़ा रोल है लाइव स्टॉक का, कितना बड़ा रोल है। भारत की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि मीथेन का तो हम बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, क्योंकि पशुपालन कृषि तो हमारा मूल व्यापार है, आधार है जीवन का। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। अब देखिए, पशुपालन क्यों किया जाता है, चलिए दूध वगैरह तो है ही है, लेकिन यूरोपीय दूसरे देशों में खासकर मांस उद्योग के लिए किया जाता है, मीट के लिए किया जाता है, और बकायदे अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप लेबोरेटरी में मीट बना सकते हैं, लेबोरेटरी में मीट बना सकते हैं। तो अगर वो टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई और अपना लिया गया तो फिर जो मीथेन गैस का उत्सर्जन है वो काफी कुछ कम हो सकता है, क्योंकि इसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसके लिए सिर्फ CO2 ही जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैसेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें दुनिया भर की दूसरी गैसेस भी आती हैं जिसमें मीथेन का बहुत बड़ा योगदान है। तो यह एक जानकारी है जो आपको आपकी राइटिंग को, आपके नॉलेज को थोड़ी सी नवीनता प्रदान करेगी कि मीथेन पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि जो पशुपालन उद्योग है, पशुपालन जो व्यवसाय है, बहुत ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन कर रहा है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, 2022 की तैयारी। देखिए, हालांकि इसके लिए बहुत कम समय बच पाता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक लंबी श्रृंखला है, हम लोग इस पर बात करते रहेंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो तो देखिए मेरे डेली ऑडियो लेक्चर का मुख्य चरित्र है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, और अगर मैं छोड़ूंगा तो फिर आपके साथ न्याय भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इससे कैसे छोड़ा जा सकता है ना। दोस्तों, कल मैंने आप सबसे एक बात कही थी कि कम पढ़ें, लेकिन कम पढ़ें का मतलब क्या है वह भी मैंने आपको बताया। आज मैं आपसे थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं कि क्या क्या पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि वक्त थोड़ा है, लेकिन आगे भी हम इस पर बात करते रहेंगे। जो डेली पढ़ने में आपका शामिल होना चाहिए वह एक न्यूज़पेपर होनी चाहिए, होना ही चाहिए न्यूज़पेपर, और ये जो न्यूज़पेपर हो ये नेशनल लेवल का हो, मतलब स्तरीय न्यूज़पेपर हो, ये नहीं कि बहुत ही लोकल किस्म का न्यूज़पेपर है, क्योंकि आजकल छोटी छोटी जगहों पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी न्यूज़पेपर आने लगे हैं, लेकिन वैसा नहीं, क्योंकि वो उस तरह के एडिटोरियल नहीं लिख पाएंगे, उस तरह के वो एडिटोरियल आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जो न्यूज भी होंगी उनमें स्थानीय ज्यादा होंगी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की खबरें नहीं होंगी। हाँ, जो बहुत ही विवादास्पद रोचक खबरें हो जाती हैं वो तो ले ली जाती हैं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट जो सिविल सर्विसेज के लिए हो सकती हैं उनको उनमें स्थान नहीं मिलेगा। तो आपके पास डेली एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर होना चाहिए, मैं अंडरलाइन करूंगा एक, बस उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कर कम पढ़ें, क्योंकि बहुत लोग हैं मेरे पास, मेल्स आते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने में 2 घंटे निकल जाते हैं, मैं ये भी पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ती हूँ। नहीं, आप एक न्यूज़पेपर लीजिए, बस 1.5 साल आपका काम चल जाएगा। अच्छे से पढ़िए, उसे इत्मीनान के साथ पढ़िए, और ऐसा भी नहीं कि आप उसी में 2 घंटे लगा रहे हैं। शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ा वक्त ज़्यादा लगे, लेकिन अगर आप डेली रेडियो न्यूज़ सुन रहे हैं, आप टीवी का, दूरदर्शन का चैनल न्यूज़ का देख रहे हैं, तो मान करके चलिए कि फिर आपको एक न्यूज़पेपर को पढ़ने में भी 1.5 से 1.75 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ तो आपको ऑलरेडी मालूम है। जो ज़्यादा वक्त लगता है इनफैक्ट वो एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ने में और एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़ने में, और वो भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आज का जो एडिटोरियल कमेंट है वो आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, या जो आर्टिकल छपा है वो आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है। एक बहुत बड़ी सुविधा आपको अब ये हो गई है कि जो दूसरे अखबार हैं उनमें भी हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट खबरें छपी हुई हों, उनकी भरपाई करने के दूसरे बहुत से रिसोर्सेज हो गए हैं। जैसे मैंने अभी डेली ऑडियो लेक्चर में आज आपसे लॉजिस्टिक इंडेक्स की बात की, यहां से आपको पता लग जाता है, हम लोग ऑलरेडी प्रेस क्लिपिंग्स का एक सेक्शन है हमारे ऐप पर, वहां आप चले जाइए तो कितने सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनके जो आर्टिकल्स हैं या जो उनके एडिटोरियल कमेंट्स हैं जो आपके लिए जरूरी है, बकायदे वहां आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। तो आप वहां पढ़िए ना, आप ज्यादा अखबारों को समय मत दीजिए। लेकिन दोस्तों, कुछ खबरें इस तरह की भी मुझे मिली हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको न्यूज सुना दे रहे हैं, हम आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं, इतना ही पर्याप्त है। मैं इससे एग्री नहीं कर पाता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं गलत हूं तो मैं भी कहना शुरू कर दूंगा और अपनी बात बंद कर दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अखबार तो पढ़ना ही चाहिए, न्यूज भी सुननी ही चाहिए। तो दोस्तों, आज की बात को अब यहीं पर रोकते हैं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से एक मित्र का नाम है सद्भावना सिंह, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।